الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. آج ہم ان شاء اللہ تعالیٰ سورۃ الحج آیت نمبر 63 سے اینڈ تک اس سورہ کو بھی اور اس پارے کو بھی ان شاء اللہ مکمل کریں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. اللہ تعالیٰ اس کو ہم سے قبول فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. توحید کی یہاں پر دلیل دی جا رہی ہے کہ کیوں تمہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو ایسے کرتا ہے، اللہ تو وہ ہے جو ایسے، جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا، وہی تمہیں نکالے گا مصیبتوں سے، مشکلوں سے. کیا وہ نہیں نکالتا رات کو دن سے، دن کو رات سے؟ وہ چیز جو بالکل ایک امپاسبل نظر آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھو کیسے ایک سے دوسرے کے اندر داخل فرماتا ہے، اور بالکل ایسے کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب دن ختم بھی ہو گیا، رات آ گئی، اور کب رات میں سے دن پھوٹ نکلا. اور کیسے ایک ناممکن سی چیز لگتی ہے کہ ایسے کھلے آسمان پہ جس جو روشن دن ہے وہ رات میں تبدیل ہو جائے، یا کیسے اندھیری رات بالکل ہے وہ دن میں تبدیل ہو جائے گی. لیکن اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے، تو وہ تمہارے حالات بدلنے پر بھی قادر ہے. اور وہی اللہ ہے جس کی تم نے عبادت کرنی، کیونکہ اس کے سوا جو بھی ہیں وہ باطل ہیں اور حق وہی ہے. اس کے بعد فرمایا آپ کہ الم ترى ان الله انزل من السماء ماء، کیا نہیں انہوں نے دیکھا، انہوں نے کبھی غور نہیں کیا اس بات پر، کیا کبھی سوچا نہیں ہے انہوں نے اس چیز کے اوپر، کس چیز پہ؟ بار بار دیکھیں یہ بات کہہ کے ریئلائز کرایا جا رہا ہے، الم ترى کہہ کے، کہ غور کرو، سمجھو اس بات کو، دیکھو اس بات کو. کیوں تمہیں اسی اللہ پر ایمان رکھنا چاہیے؟ کیونکہ وہی تو ہے جو نازل کرتا ہے آسمان سے پانی، فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً، پھر ہو جاتی ہے زمین خوب سرسبز اس پانی کے پڑنے سے، زمین دیکھو کیسے ہری بھری ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بارش کی ایک مثال دے کر اپنی قدرت کا اظہار کیا، وہ رب بارش نازل نہ کرے تو سبزہ نہ ہوگے. آپ کو پتہ ہے کہ لائف سائیکل کے اندر پلانٹس کی کتنی بڑی اہمیت ہے. اگر زمین کے اوپر یہ سبزہ نہ ہو تو سبزے کو کھانے والے نہ ہو، ان کو کھانے والے نہ ہوں گے، یعنی یہ جو بھیڑ بکریاں، ہرن، گائے، بھینس، یہ سب چیزیں، تو ان کو کھانے والے ختم ہو جائیں، اور اس طرح کرنے سے زمین کے اوپر سے لائف ختم ہو جائے گی. جانتے ہیں اس میں اس سبزے کا بہت کردار ہے، کیونکہ یہ فوڈ چین کہلاتی ہے. فوڈ چین، یہ چین تبھی چلتی ہے جب ایک دوسرے کے اوپر سارے ڈیپینڈنٹ ہیں. جب ایک چیز ختم ہوگی تو دوسری بھی ختم ہو جائے گی. اور اس میں اس ہریالی کو، اس سبزے کو بہت بڑی اہمیت ہے، کیونکہ اس کے اوپر بہت سارے جانداروں کی زندگی کا مداوا ہے، ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، اس کے اوپر چلتی ہے ان کی لائف. یہ ختم تو وہ ختم، وہ ختم تو ان کو کھانے والے ختم، وہ ختم تو اس سے آگے، تو اس طرح یہ فوڈ چین چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہی ہے جو آسمان سے بارش برساتا ہے تو یہ سبزہ اگتا ہے، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ لطیف ہے. لطیف معنی، ایک تو اس کا معنی باریک بھی، ایک ہے بہت لطف و کرم کرنے والا، مہربانی کرنے والا. یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اور وہ بڑا باخبر ہے، اس کو سب پتہ ہے کہاں پہ کتنا پانی اگانا ہے، کہاں پہ کتنا سبزہ ہونا چاہیے، انسانوں کو کیا ضرورت ہے. تو یہ ہریالی اگانا بھی اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت سے. अल्लाह अकबर। इंसान के हाथ के अंदर ना बारिश है और ना ही ये सब्जा उगाना। और आप देखें यहाँ पे अनजला माजी का सीगा है, और तुस्बिहु ये है मुजारे। तो यानी अल्लाह ताला ने बारिश को नाजिल किया तो उगा सब्जा। क्या उसी वक्त इसका मतलब उग गया? नहीं, उगा और फ्यूचर के अंदर भी बात चली गई। यानी जब बारिश होती है तो उसी वक्त एकदम हरा भरा सब कुछ नहीं हो जाता, बल्कि टाइम लगता है। आप देखते हैं बारिश होती है, फिर 2-4 दिनों के अंदर सब्जा होने लगता है, फिर और ज्यादा होता है, फिर और ज्यादा होता है। टाइम लगता है ना, इंतजार करो फिर। क्योंकि देखिए बारिश, इंतजार करो क्यों कह रही हूँ, क्योंकि बारिश जो है ये वो चीज है जिससे कुरान की मिसाल दी गई। यानी कुरान की मिसाल भी बारिश जैसी है, ये भी मुर्दा दिलों को जिंदा करता है। जैसे बारिश जिंदा करती है जमीन को, सरसब्ज कर देती है, इस तरह कुरान से दिल जिंदा होते हैं। मगर टाइम लगता है ना सब्जा उगने में, तो कुरान की बारिश से भी दिलों को जिंदा होने में वक्त लगता है। इंतजार कीजिए, ये ना सोचे कि कुरान पढ़ा गया, बताया गया, पता नहीं कोई सुनता ही नहीं, ये तो सुनते ही नहीं, मायूस होके बैठ गए, या फिर अपनी मेहनतों को बेकार समझने लगे। नहीं, फल जरूर आएगा, जरूर सब्जा उगेगा, मगर वक्त लगेगा। हो सकता है हमारी जिंदगी में हम फल देख लें, हो सकता है हमारे बाद आए, लेकिन वो लतीफ है, बहुत सरल तरीके से ना, आहिस्तगी से, खामोशी के साथ इस कायनात में काम हो रहा है, सॉफ्टली हो रहा है, पता भी नहीं चलता। जैसे अभी दिन और रात की मिसाल हो, तो वही जमीन आप थोड़े दिन बाद देखेंगे कि कैसी हरी भरी है, पता भी नहीं चला। तो अल्लाह ताला ऐसे निकालता है। अब ये देखें यहां से लेके ना 63 आयत से 76 तक सारे तौहीद के दलाइल नहीं है। आखिरी 2 आयात में फिर एक मुख्तलिफ बात की गई कि अब आपने क्या करना है, लेकिन अब आप देखेंगे ये सब तौहीद के दलाइल आपको दिए जा रहे हैं कि अल्लाह ताला को पहचानो। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, उसी का है जो आसमानों में और जो कुछ जमीन में है। तो फिर तौहीद का ये भी एक बहुत बड़ा एक दर्स मिल गया कि जब उसी का है जो आसमान में और जो जमीन में, और उसके साथ उसकी मिल्कियत में कोई भी शामिल नहीं, तो फिर तुम किसी और से क्यों मांगते हो, किसी की इबादत क्यों करते हो, किसी के आगे क्यों झुकते हो। वह इन अल्लाह, और बेशक अल्लाह ताला लहु अल गनीयुल हमीद, वो बेनियाज भी है, हमद से हमीद है, वो है जो काबिले तारीफ है, तारीफ वाला। यानी हमीद वो होता है जिसकी कोई तारीफ करे या ना करे, वो खुद तारीफ के काबिल है, तारीफ वाला है, उसकी तारीफ कभी खत्म नहीं हो सकती। और वो गनी है यानी बेनियाज, यानी उसको किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, वो किसी का भी मोहताज नहीं है, किसी चीज में भी वो किसी के ऊपर नहीं है, उसकी जात के जो है किसको सेल्फ सफिशिएंट जिसको कहते हैं, वो काफी अपने लिए वो काफी है, और दूसरों के लिए भी उसको किसी की मोहताजी नहीं कि वो किसी को खिदमत ले, किसी से काम करवाए तो उसके काम होंगे। ना फरिश्तों का मोहताज, ना नबियों का मोहताज, ना किसी चरिंद परिंद या जानवर या जिन इंस किसी का भी मोहताज नहीं। ऐसे रब की इबादत करो क्योंकि वो है इबादत के लायक। अलम तरा, फिर इंसान को गौर करने को कहा गया कि अब ये भी सारी बातें इस चीज की तरफ दावत दे रही कि एक खुदा को क्यों नहीं मानते। इसमें इस सूरा के अंदर बाज आयात की भी हैं, फिर बाकी मदनी है, ठीक है। तो आप ये आयात यूं लगता है कि मक्की आयात है कि अलम तरा अन्नल्लाह सखर लकुम मा फिल अर्द, क्या तुमने नहीं देखा कि बेशक अल्लाह ताला ने मुसख्खर कर दिया है लकुम, तुम्हारे लिए, आपके लिए। खुद सोचे, मेरे लिए, हाँ, कुरान आपको कह रहा है लकुम, ये नहीं कहा गया लिल इंसान, लकुम डायरेक्ट इंसान से हर एक से बात की गई कि आपके लिए अल्लाह ताला ने कोई कहे ना आपको कि ये तोहफा मैं आपके लिए लाई, तो आपको कितना अच्छा लगता है कि मेरे लिए खास वो आपको आपके हाथ में दे। अल्लाह ताला को भी पहचानो, उसकी कदर जानो, उसने तुम्हारे लिए मुसख्खर किया क्या चीज, माफिल अर्थ जो कुछ भी है जमीन में। मुसख्खर करने का मतलब क्या होता है? मुसख्खर करना मतलब आजिज कर देना, किस हर चीज को आजिज कर दिया तुम्हारे लिए। आजिज मतलब क्या? तुम्हारे हुक्म के ताबे कर दिया, तुम्हारे काबू में कर दिया, तुम्हारी अंडर कमांड कर दिया। यानी इंसान के काबू में, तो हम सोचते हैं कि मेरे काबू में सारी चीजें तो नहीं है, अब मेरे काबू में कोई पहाड़ तो नहीं है, कोई चरिंद परिंद तो नहीं है, कोई जानवर शेर चीता तो नहीं है, ये तो मेरे काबू में नहीं है, दरख्त मेरे काबू में नहीं है, तो फिर कैसे यहां पे कहा गया माफिल अर्थ जो कुछ भी है जमीन में। तो इसका मतलब ये है कि इंसान को फायदा पहुंचाने के लिए खिदमत में उसके लगा दिया, ये मतलब है मुसख्खर करने का, कि हर चीज माफिल अर्ज जो भी जमीन में वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपकी खिदमत में लगी हुई। कोई कह दे मैं आपका खादिम तो इंसान फूले ना समाए। अल्लाह ताला फरमाता है जो कुछ भी जमीन में वो आपका खिदमत गुजार अल्लाह ताला ने बना दिया, खुद नहीं अल्लाह ने बनाया, वो खुद नहीं हुआ, अल्लाह ताला ने उसको ऐसा कर दिया कि वो आपको फायदा पहुंचाने में लगा हुआ है। अब बेशुमार चीजें हैं जिनका तो हमें पता भी नहीं कि वो हमें कैसे फायदा पहुंचा रही है, हमें जीदा जीदा चीजों का पता है, आप उनकी लिस्ट बना लें आपको यही समझ में आएगा, अच्छा भाई बकरियां हैं, गाय है, ये शायद कश्तियां हैं या घोड़े हैं या गाड़ियां हैं, या ये चीजें आपको दो चार चीजें समझ में आएंगी। अल्लाह ताला फरमाता है माफिल अर्थ, ये गौर करने की बात है कि जो कुछ भी जमीन में, इतना कुछ है, जमीन भरी पड़ी है चीजों से, हर चीज लकुम मेरे लिए, अल्लाह ताला ने बता दिया कि ये मेरे लिए काम कर रही है। कैसे इंसान का दिल फिर ना झुक जाए शुक्र में, कैसे ना वो फिर अल्लाह ताला की इस नेमत के ऊपर उसके आगे शुक्रगुजारी के लिए अपने सर को झुका दे, कैसे ना इंसान का दिल भर जाए फिर इस चीज से कि मेरे रब ने मेरे लिए कर दिया। अब देखें अल्लाह ताला की जो भी बनाई हुई चीज है जमीन में, वो अगर मेरी खिदमत में लगी भी है, इसका मतलब कारखाना है कुदरत, तो अल्लाह ताला ने मेरे लिए ये पैदा किया ना। लेकिन इंसान ने क्या किया? उसने उलट कर दिया, वो इनकी खिदमत में लग गया, वो कहीं घरों की खिदमत कर रहा है, कहीं गाड़ियों की खिदमत कर रहा है, कहीं किसी की कहीं किसी की, अल्लाह ताला ने तो ये आपकी खिदमत में लगाए थे, आप इनकी खिदमत में लग गए, कहीं सवारियों की खिदमत कर रहा है, कहीं किसी चीज की खिदमत कर रहा है, अब आप देख लें हालांकि सब चीज आपकी खिदमत के लिए, तो बहुत बड़ी बात है, इंसान ने अपने आप को इतना गिरा लिया। अल्लाह ताला ने उन चीजों को तुम्हारे काम में लगाया था, तुम उनके काम करने लगे। जब इंसान को पता चलता है ना कि सारा कुछ ही मेरे लिए ही चल रहा है, और अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में फरमा दी जो कुछ जमीन में वो तुम्हारे लिए है, वहां पे भी ये कहा गया, और देख लो कश्तियों को वल फुल का तजरी फिल बाहरी भी अमरी, ये जो कश्तियां भी चल रही हैं समंदर में, ये भी कोई खुद पर खुद नहीं चलने लगी, ये भी उसके हुक्म से चल रही है, क्यों? ताकि तुम्हारी खिदमत करें, समझे? और जमीन तो छोड़ो, ये आसमान भी, वह युम सिकु समा, और उसने वो थामे हुए है आसमान को, अंतका अल अर्द के गिर पड़े वो जमीन पर, यानी कि ये ना हो कि गिर पड़े जमीन पे, इल्ला भी इज़नी, मगर उसके इज़न के साथ थमा हुआ है तो उसके इज़न के साथ है। देखिए कोई पिलर नजर आ रहा है इस आसमान को जो थाम के खड़ा हो, जिसपे इसकी छत पड़ी भी है। कोई पिलर नहीं नजर आता, कोई सपोर्ट स्ट्रक्चर नहीं नजर आता, कैसे खड़ा हुआ? इसका मतलब ये भी पता चलता है कि आसमान एक ठोस चीज है। ऐसा नहीं कि आसमान कोई धुआं है बस और कुछ भी ये नहीं है, कोई चीज है ये, और ये जमीन पे गिर भी सकता है मगर अल्लाह के इज़न से रुका हुआ है, क्योंकि किसी जात ने इसको थामा हुआ है। तो इसका मतलब गिर भी सकता है, इसका मतलब कैसे गिरेगा? जब कयामत के दिन, जब सूरज बेनूर हो जाएगा, चांद बेनूर हो जाएगा, सितारे गिरने लगेंगे, और पता नहीं और क्या क्या चीजें इसके ऊपर गिर रही होंगी। इसी तरह अल्लाह ताला ने उन सब चीजों को भी, इस वक्त भी जो जमीन पर गिर सकती हैं, अल्लाह के इज़न से वो रुकी नहीं है। यानी कितनी रॉक्स हैं, कितने कॉमेट्स, मीटियोराइड्स, प्लैनेट्स, कितने सितारे, कितनी कुछ चीजें आके जमीन से टकरा जाएं, इसके ऊपर गिर जाएं, तो क्या हो यहाँ पे? मैं इसी आयत के लिए ना मैंने सर्च किया, मैं इतनी हैरान हुई। मुझे इसका शौक भी है, तो एक वो चीज़ थी मेरे लिए इंटरेस्ट की। इतनी हैरान हुई कि एक जगह लिखा हुआ था, द डे द स्काई फेल, वो दिन जिस दिन आसमान गिर गया था। अल्लाह अकबर। तो मैंने कहा ये यहाँ पे लिखा हुआ है, अल्लाह ने थामा हुआ है आसमान को कि वो गिर पड़े जमीन पर, मगर उसके इजन से, यानी जिस दिन उसका इजन नहीं होगा उस दिन आसमान गिर पड़ेगा। और जाहिर है किसी साइंसदान ने तो ये नहीं पढ़ी होगी, मगर उन्होंने तो वैसे अपने तौर पे लिखा था, डे द स्काई फेल, वो कौन सा दिन था पता है आपको? 66 मिलियन ईयर्स पहले एक बहुत बड़ा रॉक था जो जमीन पे गिरा था, उस दिन को साइंसदान लिखते हैं द डे द स्काई फेल। इस टर्म से ही मैं हैरान हो गई कि देखो अल्लाह ताला भी यही तो फरमाता है। हम सोचते हैं ना आसमान कैसे गिर सकता है, उन्होंने वाकई ये, क्योंकि इतना बड़ा एस्ट्रॉयड गिरा था जिसकी जो जिसका हुजम इतना, यानी उसकी लंबाई इतनी थी, 10 से 15 किलोमीटर दूर थी, इतनी इतनी बड़ी रॉक थी वो, इतनी बड़ी थी किलोमीटर्स में, मीटर में नहीं, 10 से 15 किलोमीटर दूर पे, काफी बड़ी बात होती है। और जिस स्पीड से वो जमीन पे गिरा, सारी जमीन हिल के रह गई, गर्द का एक यानी तूफान उठा, और उसकी वजह से सूरज ब्लॉक हो गया था, तो बहुत थोड़ी उसमें से लाइट आ रही थी, जिससे सारा सब्जा खत्म हो गया। और फिर पता है आपको यही वजह बनी थी ना डायनासोर्स के खत्म होने की इस जमीन पे, अल्लाह ताला ने खत्म करना होगा क्योंकि इंसान को भेजना था उसके बाद, तो ये जमीन पे ये हो चुका है, इतना बड़ा गड़ा बना। और फिर सूरज कितने अरसे तक ब्लॉक रहा, जिसकी वजह से कितने ही जानदार इस जमीन के ऊपर मर गए, कितने ही किस्म के जानदार बिल्कुल खत्म हो गए जमीन के ऊपर से, सुभान अल्लाह। तो ये ना सोचें कि ये कभी हो नहीं सकता, जो 66 मिलियन ईयर्स अगो हो गया था वो कभी भी हो सकता है दोबारा, अल्लाह के लिए क्या मुश्किल। तो क्यों नहीं कोई रॉक जो उड़ती फिर रही है कायनात के अंदर, सूरज के गिरजे एस्ट्रॉइड्स घूम रहे हैं, क्यों नहीं कोई आके गिर जाता? दोबारा भी तो ऐसे हो सकता है। अब फिर उसके बाद ला के दिखाओ अपनी टेक्नोलॉजी के, जो उसको रोक के दिखाए, कोई और प्लेनेट आके गिर सकता है, टकरा सकता है। ये इतनी स्पीड में मूव करने वाली बॉडीज हैं कि आप देख ले हैं, या आपकी गाड़ियां मूव करती हैं सड़कों पे, कितनी दफा हादसा हो जाते हैं, टकरा जाती हैं, लेकिन कितनी तेजी से मूव करने वाली, इतने अजीम जुस्से हैं ये, मैसिव बॉडीज, इतनी ज्यादा इनकी वेलोसिटी है, और उसके साथ ये भाग रहे हैं लेकिन टकरा नहीं रहे कुछ। ये यानी एक इंसान ना थोड़ी सी भी अपनी अक्ल इस्तेमाल करे तो उसकी अक्ल उसको बताती है, उसने कुछ भी ना पढ़ा, सिर्फ ये कायनात में गौर ही कर लेना, तो उसको ये बात समझ आती है कि कोई है जो इसको कंट्रोल करने वाला है। इसका जवाब कौन देगा कि क्यों नहीं कोई चीज गिर जाती जमीन पे? कौन जवाब देगा? इसका मतलब कोई है जो रोकने वाला है, कोई है जो समंदरों के अंदर कश्तियों को डूबने से बचाने वाला है। लेकिन इला भी अमर ही सिवाय उसके अमर के, तो वो कोई चीज भी डूब सकती है। उसके अमर उसका ना हो, उसका हुक्म ना हो, उसके अमर से चल रही है, अगर ना हो उसका अमर तो डूब जाए। टाइटैनिक को बोला था ना, इवन गॉड कैन नॉट सिंक इट। ये बात ही इतनी बड़ी थी कि उस दिन ही खत्म ही हो गई बात ना। लोगों ने इतने शौक से उसके टिकट लिए थे कि ब्लैक में उसके टिकट बिके, बहुत महंगे बिके, बड़ी खुशी से उसके सफर के लिए बैठे। इन्होंने अल्लाह को चैलेंज किया कि वो नहीं सिंक कर सकता इसको। अपने पहले सफर में अल्लाह ताला ने देखे उसको कैसे पाश पाश कर दिया, ये बता दिया इस दुनिया को कि इस समंदर के अंदर भी कश्ती चलती है तो अल्लाह के हुक्म से चलती है। उसका हुक्म ना हो तो तुम्हारे तो बड़े बड़े जहाज डूब जाए। अल्लाह अकबर। तो ये भूलना नहीं बात कि जो कुछ भी तुम्हारी खिदमत कर रहा है यहां पर ना, वो अल्लाह के हुक्म से खिदमत कर रहा है, खुद से नहीं कर रहा। क्यों खिदमत कर रहा? अभी बात पहले गुजरी है ना और दोबारा आई है, इन अल्लाह बिन्नासी लरऊफुर रहीम। बेशक अल्लाह ताला लोगों के साथ दो ताकीदें, इन्ना की भी और ला की भी, बेशक अल्लाह ताला अलबत्ता लोगों के साथ बहुत शफकत करने वाला। राफत वो होती है जो एक बाप को अपनी औलाद के साथ होती है, उसको राफत कहते हैं, बड़ा शफकत करने वाला, बड़ी इसमें मोहब्बत होती है, बड़ी सॉफ्टनेस जेंटलनेस होती है। किसके साथ? मुसलमानों के साथ नहीं, बिन्नास, सारे इंसानों के साथ। उसने इंसान से बड़ी मोहब्बत की है, इन पे बड़ा ही मेहरबान है। और आपको पता है ये जो कायनात में जितनी चीजें हैं ना, सारी मखलूक को इस चीज की समझ है कि इंसान अल्लाह का बड़ा चहीता है। इसीलिए तो जब इंसान नाफरमानी करता है तो सब इसके पीछे पड़ जाते हैं। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि अगर ये करीब है कि आसमान फट पड़े और जमीन शक हो जाए और पहाड़ रेजा रेजा हो जाए कि ये कहते हैं कि रहमान का बेटा है, इस बात के ऊपर ना उनके ऊपर इतनी गरा गुजरी। अल्लाह अकबर। तो सारी मखलूक को इस चीज का अंदाजा है, अल्लाह ताला की जात का अंदाजा कर सकते हैं। और वो ये भी जानते हैं कि इंसान जब नाफरमानी करता है तो वो इंसानों के पीछे पड़ते हैं। इसीलिए तो समंदर कहते हैं कि अल्लाह हमें इजाजत दे कि हम इनको डबो दें, जमीन कहती है अल्लाह मुझे इजाजत दे कि मैं फट पड़ू। अल्लाह ताला फरमाता है ना, अमिन तुम मन फिस्समाई अन युरसिला अलैकुम हासिबा। क्या तुम बेखौफ हो गए इस बात से कि वो जो आसमान में है वो तुम्हारे ऊपर पत्थरों की बारिश कर दे? इस जमीन के ऊपर पत्थर गिर पड़े, इस जमीन पे ये रॉक्स दोबारा, कि एक रॉक गिरा था इतना बड़ा जिससे ये सब हो गया था, जमीन पे से लाइफ फना हो गई थी एक रॉक से। तो सोचे तुम बेखौफ हो गए? अमामिन तुम मन फिर समाई अर्थ सिर्फ बिल्कुल अर्थ। तो तुम्हें तुम्हें डर नहीं लगता कि वो जो आसमानों में वो तुम्हें जमीन में धसा दे? तुम डरते नहीं हो? तुम्हें समझ नहीं आती? और इंसान जो जालिम होता है ना, वो तो बाकियों का भी बेड़ा गर्क करता है। जब वो जुल्म करता है, जब वो गुनाह करता है ना, सिर्फ अपनी तबाही नहीं करता, वो बाकी मखलूक को भी जो है ना मुसीबत में डालता है। इसकी वजह से डलते हैं। एक आदमी अबू हुरैरा के पास आया और बोला, एक जालिम सिर्फ अपने आप का ही बुरा करता है, यानी जैसे हम कहते भी है ना कि जालिम सिर्फ अपना ही बुरा करता है। तो फरमाने लगे, नहीं बल्कि परिंदे भूखे मर जाते हैं अपने घोंसलों में जालिम के जुल्म की वजह से। क्यों? क्योंकि कहत साली इंसानों के गुनाहों की वजह से होती है। ये बारिशें नहीं होती इंसानों के गुनाहों की वजह से, जलजले आते इंसानों के गुनाहों की वजह से, रिस्क रुक जाता है इंसानों के गुनाहों की वजह से, ये सुनामियां ये सब इंसानों के गुनाहों की वजह से होता है। और जब इंसान नेकी करता है तो ये सारी खुश होती है मखलूक, देखिए, नहीं आपको कितनी दफा वो हदीस सुनाई कि जब इंसान इल्म हासिल करने के लिए निकलता है तो सारी मखलूक उसके लिए दुआएं करती हैं, मछलियां दुआएं करती हैं उसके लिए, समुद्रों में जो है चींटियां अपने बिलों में होती हैं वो उसके लिए दुआएं करती हैं। खुद सोचिए आपके लिए कितनी मखलूक दुआ कर रही होगी, सुभान अल्लाह। तो यानी इंसान अपने अमल के साथ, अब अल्लाह की फरमा बरदारी के साथ, वो खुद भी फायदा उठाता है, दूसरी मखलूक भी फायदा उठाती है। और जब इंसान बेखौफ हो जाता है, अल्लाह की नाफरमानी करता है, गुनाहों में बढ़ता है, अपना तो बेड़ा गर्क करता है, सबका ही करता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या उसको समझ नहीं आती? अल्लाह ताला ने कितनी चीजों को उसके लिए मुसख्खर किया, कईयों की तो हमें समझ आ जाती है। ऊंट, घोड़ा, हाथी, ये सब देखे ना आप, कैसे हमारे से तो, इंसानों से तो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है ना ये। हाथी एक पैर रख दे तो इंसान का को तो कुछ उम्र निकल जाए, छोटा सा इंसान है। लेकिन अब ये शेर है, बब्बर शेर है, चीते हैं, कैसे अल्लाह ताला ने मुसाफर कर दिया। इंसान सर्कस में उनको कैसे अपना आगे मुती फरमा बरदार कर लेता है, हाथी को कैसे लेके चला होता है, ऊंट की नुकेल डाली होती लेके जा रहा होता है, घोड़े वगैरह, घोड़ा भी कितना वो हो जाए तो कैसे करता है, ये गाय बैल है ये सरकश हो जाते, देखा कैसे करते हैं ये, किस तरह इंसान को मार छोड़ते। ठीक, तो अल्लाह ताला ने इनको मुती फरमा बरदार बना दिया, मुसख्खर कर दिया। इसके बाद क्या होना चाहिए? जब इंसान ये सारी बातें सुनता है तो होना क्या चाहिए? दिल झुक जाना चाहिए अल्लाह ताला की अजमत से और उसकी एहसान मंदी से, हमारा दिल भर जाना चाहिए। क्योंकि हम नजर दौड़ा के देखें, जमीन हद्दे निगाह तक, दूर दूर तक, जहां तक आपकी नजर जा रही है ना, देखिए, नजर भर के देखिए और फिर सोचिए, अल्लाह तूने इस सबको मेरी खिदमत में लगा दिया, तेरी कितनी बड़ी करम नवाजी। और फिर खुशकी पे ही नहीं, समंदरों में भी चीजों को मेरी खिदमत के लिए लगा दिया। अल्लाह, आसमान को तूने थामा हुआ कि मेरे ऊपर गिरना पड़े। तो सिर्फ अपनी बात को सोचे आप, इस किसी को भी ना सोचे, मेरे लिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने लकुम कहा तुम्हारे लिए। अपने आप के ऊपर रख के देखे, सारी इंसानियत के लिए। लेकिन जब आप सबका सोच देना तो फिर हाँ तो ठीक है, मुझे क्या, उसको शुक्र करना चाहिए, उसको करना चाहिए, मुझे करना चाहिए, मैं भी तो लकुम में शामिल हूं, उन सब इंसानों के एक हजूम के अंदर एक मैं भी तो हूं ना, जिसके लिए अल्लाह ने आसमान को थामा हुआ। फिर भी इंसान शुक्र नहीं अदा करता, फिर भी इंसान उस रब के आगे झुकता नहीं, फिर भी इंसान कहता है मेरे पास टाइम नहीं उसके लिए। यकीन जाने एक दिन आपको नजर आ जाए आसमान से कोई दूर से तेजी से कोई रॉक इस जमीन की तरफ आ रही, जान निकल जाएगी कि अब क्या होगा, हम खत्म हो जाएंगे, दब जाएंगे, मसले जाएंगे, हम तो चींटियों से भी छोटी चीज है। तो सोचते नहीं हो, लेकिन ये उसकी, उस रब की मेहरबानी है। तुम उस की मेहरबानी के ऊपर बजाए इसके के झुक जाओ और अकड़ जाते हो उसकी मेहरबानी पे, बजाय इसके कि उसकी एहसान मंदी के जज्बात तुम्हारे अंदर हो, तुम और नाफरमान हो जाते हो। एहसान करने वाले का बदला क्या यही है कि उसके आगे सर उठाया जाए? एहसान करने वाले के जवाब यही है कि आप नाफरमानियां करके दिखाएं? अल्लाह तू कितना अजीम है और है अल्लाह हम कितने जालिम हैं। फिर और सुन लो, वहू अल्लदी अहयाकुम, वो अल्लाह वो जात है, और यही वाला मजमून सूरह बकरा में भी आ चुका ना। और देखिए, हुआ जब मैंने आपको बताया शुरू में आ जाए तो फिर उसका मतलब है वो ही है, सिर्फ वो अल्लाह ही वो जात है, यानी और कोई नहीं है इसके साथ शामिल कि उसकी भी मेहरबानी जी, आपकी भी मेहरबानी जी, आपका भी शुक्रिया, नहीं भी तो कोई है ही नहीं ना, सिर्फ वो ही है जिसने पैदा किया तुमको, सुम्मा युमीतुकुम, फिर मौत देगा तुमको, सुम्मा युहयीकुम, फिर जिंदा करेगा तुमको। लेकिन इंसान बड़ा नाशुक्र, वो इस जात का कितनी बड़ी तुम्हारे ऊपर करम नवाजी है कि उसने तुम्हें जिंदगी दी। देखिए सबसे पहली चीज तो लाइफ है ना, अगर लाइफ ही नहीं तो फिर सारी चीजें खत्म, फिर हमारी बला से आसमान खड़ा हुआ या गिर पड़े, कश्तियां चले या ना चले, पौधे उगे ना उगे, और कोई जिंदा रहे ना रहे, अगर आपके पास जिंदगी नहीं है तो सब चीजें आपके लिए तो कुछ भी नहीं हैसियत रखती ना। अल्लाह ताला की कितनी बड़ी मेहरबानी है कि वो जिंदगी दी उसने, तुम जिंदा करता है तुमको, जिंदगी देता है तुमको, और जिंदगी बख्शने वाला कोई भी नहीं। अगर जिंदगी किसी के हाथ में होती तो लोग वेंटिलेटर्स पे ना मरते, अस्पतालों में ना मरते, कहते हैं ना वो उसको ले जाते अस्पताल, हाँ डॉक्टर वक्त पे आ जाता, ये दवाई लगा देते, ये इलाज मिल जाता, जिंदगी मिल जाती। नहीं, जिंदगी कोई भी नहीं दे सकता, सिर्फ अल्लाह दे सकता है, वो अल्लदी आया को। और किसको दी जिंदगी? सिर्फ ईमान वालों को नहीं, जो उसको नहीं मानते उनको भी दी, जो उसको नहीं मानते उनकी भी खिदमत में सारी ही जमीन की चीजें लगा दी, जो उसकी नाफरमानियां करते उनके लिए भी आसमान को थामा, जो उसको कहते हैं कि कोई है ही नहीं खुदा, खुदा के बगैर ही ये कायनात चल रही है, उनके लिए भी कश्तियां चला दी, जो उसको छोड़ के पत्थर के बुतों के आगे माथे टेक रहे हैं उनके लिए भी खिदमत गुजार बना दिया हर चीज को। और उसको कोई माने या ना माने, रोटी वो सबको दे रहा, खिला रहा है सबको, पिला रहा है सबको, जिंदगी चला रहा है सबकी, जिंदगी दे के भी छोड़ नहीं दिया, जिंदा किया, फिर जिंदगी को सस्टेन करना, मेंटेन करना, ये भी अल्लाह ताला ही कर रहा है। फिर एक दिन आता है जो वो मौत दे देता है। मौत भी एक चीज है, ऐसे नहीं कि ये बस रूह निकल गई है मौत है, नहीं, मौत भी एक चीज है, क्योंकि अल्लाह ताला ने अल्लज़ी खलकल मौत वल हयात फरमाया ना, उसने पैदा किया है मौत को भी, पैदा किया है जिंदगी को भी, इसका मतलब चीजें हैं कोई, मौत भी एक चीज है जो तारी हो जाती है। अब इंसान कहता है लो मौत कौन सी कोई बड़ी अच्छी चीज है जिसकी मैं कोई शुक्रगुजारी करूं, नहीं, आपको नहीं पता मौत भी एक नेमत है। जब इंसान बिस्तर पे एड़ियां रगड़ रहा हो ना, तो फिर मौत भी पता चलता है कि एक नेमत है। आज तक सोचे कोई भी ना इस जमीन पे मरता तो यहाँ पे क्या हाल होता, बूढ़ों से ये सारी जमीन भरी होती, बीमारों से भरी होती, बिस्तरों पे पड़े हुए लोगों से भरी होती, कमजोर तरीन रजील बुढ़ापे में लोगों से भरी होती। ठीक है, हम अपने प्यारों को याद करके तो रोते हैं कि वो चले गए, लेकिन सोचें अगर वो और 100 साल जिंदा हो जाते तो क्या होता, फिर इंसान खुद ही हाथ उठा के दुआएं करने लगता है कि अल्लाह अब रहम कर दे। सोचें जरा, तो वो कर्म करता है कि मौत दे देता है इंसान को, उसको पर्दे में ले लेता है, सुम्मा युहयीकुम, फिर वो यही नहीं है, फिर उसके बाद भी दोबारा वो जिंदा करेगा। अल्लाह अकबर, इसलिए कि इस जिंदगी के बाद मौत तो मौत, फना होने का नाम थोड़ा ही है कि फना हो गया, फना नहीं है मौत, बस जिंदगी का खत्म हो जाना, एक मौत का तारी हो जाना, ये है रूह का निकल जाना, ये है मौत, फिर जिंदगी दोबारा लाएगा। और ये जो हम रोजाना एक तजर्बा करते हैं ना, एक ट्रेलर हम देखते हैं इसका, जब हम रात को सोते हैं तो ये है मौत, पूरा दिन काम किया जिंदगी, रात को सोए मौत, जब हम नया दिन शुरू करते हैं ना तो वो एक नई जिंदगी है। अल्लाह ताला चाहे तो वो जिंदगी दे, चाहे तो इसी मौत में उठा ले। तो ये ट्रेलर हम देखते हैं ना रोजाना, इसी तरह एक दिन रियल मौत आ जाएगी और फिर दोबारा जिंदगी अल्लाह ताला बख्शेगा जब उसके आगे खड़े होना होगा। इसी तरह ईमान भी तो जिंदगी है ना, उसने ईमान दे के तुम्हें जिंदगी बख्श दी, और अगर वो चाहे ना तो इसको वापस ले ले, ये मौत है, फिर वो ही चाहे तो वापस ईमान बख्श सकता है, तुम्हें दोबारा जिंदगी दे सकता है, उसकी सेवा कोई नहीं देख सकता। अल्लाह अकबर, इन्नल इंसान अला कफूर। लेकिन अल्लाह ताला ने ना बहुत जगह पे कुरान में ये गिला किया है कि इंसान बहुत नाशुक्र है, बहुत नाशुक्र है। इंसान की नाशुक्री ये है कि वो अपने उस मालिक को ही नहीं पहचाना जिसने उसको जिंदगी दी, उसी को नहीं पहचाना जिसने उसके लिए जमीन को बिछा दिया, उसको ही नहीं पहचाना जिसने उसके लिए हर चीज को खिदमत में लगा लिया, उसको ही नहीं पहचाना जिसने उसको यहाँ पे सर्वाइवल दिया हुआ, हर चीज से महफूज रख के, इवन इतने बड़े आसमान को थाम के पूरा का पूरा गिरने नहीं दिया उसके ऊपर। अल्लाह अकबर, इंसान सहम जाता है ये सोच के भी कि आसमान मुझ पे गिर पड़े, मैं क्रश हो जाऊं जमीन और आसमान के दरमियान तो क्या हो जाएगा। अल्लाह अकबर, तो तुम समझे ही नहीं, तुमने शुक्रगुजारी की ही नहीं, तुमने माना ही नहीं उस रब को, और जो मानते भी हैं वो कैसे मानते, वो मान के भी मुंह से दावे कर रहे हैं वो भूले हुए उस रब को, इसकी शुक्रगुजारी में तो कोई लम्हा कोताही नहीं करनी चाहिए थी। अल्लाह ताला फरमाता है ना उसके अंदर आदियात में, इन्नल इंसान लि रब्बिही लकनूद व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद। बेशक इंसान अपने रब का बड़ा ही नाशुक्र है और उसको पता है ये बात, यानी जिनसे इंसान नाशुक्री है, यानी कि हर इंसान, लेकिन अक्सरियत इंसानों की इसके अंदर नाशुक्री है। और शैतान ने जब इसको अल्लाह ताला ने निकाला था तो इसने कुछ और नहीं बात कही थी, इसने ये कहा था ये बड़ा ही नाशुक्रा निकलेगा, और इंसान आज नाशुक्री की रविश पे है। हालांकि देखिए उस जिसने जिंदगी दी भी है, मैंने आपको बताया ना आपकी सारी चीजें आपकी जिंदगी पे डिपेंड करती, आप इतनी चीजों की फिक्र करते हैं ये जॉब हो जाए, ये करियर हो जाए, ये हो जाए, फलाना हो जाए, घर का ये, सौदों का ये, पता नहीं क्या क्या चीज का, बिल का, बच्चों का, पता नहीं किस किस चीज का, लेकिन ये सारी चीजें अगर गौर करें तो हमारी जिंदगी के साथ ही है ना, और जिंदगी किसके साथ है जुड़ी हुई, पता है कितनी नाजुक डोर के साथ जुड़ी हुई है, ये सांस के साथ जुड़ी हुई है, ये एक सांस अंदर ना जाए तो जिंदगी खत्म, और एक सांस बाहर ना ले सके, ला सके ना बाहर तो जिंदगी खत्म, कितनी नाजुक, कितनी सेंसिटिव, एक सांस की मार हो तो, एक सांस की मार, कितने मोहताज हो तुम अल्लाह के, कि एक एक सांस में, और सांस हर लम्हे चल रही है, हर लम्हे, हर लम्हे वो तुम पर अपनी बख्शिश कर रहा, हर लम्हे तुम पर अपना फजल कर रहा है, ये सांस का आना और जाना ये है तुम्हारी जिंदगी जो उसने दी भी, तुम हर सांस पे उसके शुक्र गुजार हो। लेकिन एक सांस तो क्या, कई सांसें गुजर जाती हैं, शुक्र नहीं आता, कितनी जिंदगी गुजर जाती है, सजदा नहीं होता, कितने साल गुजर जाते हैं उसका जिक्र ही नहीं करते। अल्लाह अकबर, वाकई इंसान बड़ा ही ना शुक्र है। इस एहसास के बगैर जिंदगी गुजर रही है, भागी जा रही, एक के बाद एक सांस, एक के बाद एक सांस लिए चला जा रहा है, लिए चला जा रहा है। बड़ा खुश होता है जब उसकी बर्थडे आती है, बड़ा खुश होता है, मेरा बर्थडे आज। देखा जाए तो सांसों का एक सिलसिला है, कितने सांस तुम लेते गए, तुम 30 साल के हो गए 30 साल से सांस ले रहे हो, 40 साल के हो गए 40 साल से सांस ले रहे हो, किस बात पे तालियां बजा रहे हो, किस बात पे केक काट रहे हो, तुम्हारा क्या कमाल है, तुम्हें तो झुक जाना चाहिए था अपने रब के आगे कि मालिक इतने साल मैं सोया, मैं जागा, मैं मशहूल हूं या फारिग हूं, मैं खा रहा हूं या पी रहा हूं, मैं खड़ा हूं या बैठा हूं, तू मेरे सांस को चलाए चला गया, मेरी सांस चलती गई बगैर मेरे एहसास के, बगैर मेरे जाने, बगैर मेरे शऊर के तू चलाता गया, तू गाफिल नहीं हुआ, मैं तुझसे गाफिल हो गया, तू नहीं मुझे भूला, तू भूल जाता तो मेरे सांस रुक जाते, अल्लाह तू मेरी एक एक सांस को चलाता रहा और उसकी निगहदाश्त करता रहा कि मेरा सांस चल रहा है और मैं तुझे भूल गया, कि जरूरत तो मेरी है, तेरी जरूरत नहीं है कि मेरा सांस चले, मेरी जरूरत है कि मेरा सांस पहला हमें शुक्र गुजार बनते, हम तो इतना शुक्र भी नहीं कर सकते जितना करना चाहिए, हमारी औकात क्या और हम सर कैसे उठाते हैं, हम कैसे तुझे भूल सकते हैं। वो शायर ने कहा था जो दम गाफिल सो दम काफिर, जो दम जो सांस गफलत में निकला वो नाशुक्री में निकला। देखिए आप कितने ही सारे हम लोग हैं जो दिन में कितने सारे काम कर रहे हैं, लेकिन बस इस चीज के एहसास के बगैर कि कोई मेरा मोहसिन है, कोई मुसलसल मुसलसल मेरे ऊपर एहसान कर रहा है, कोई मुसलसल मेरी टेक केयर कर रहा है, मुझे संभाल रहा है, मुझे पाल रहा है, मुझे चला रहा है, कोई मेरे लिए केयर करने वाला है, उसकी सारा वक्त नजर मेरे ऊपर है, सो केयरिंग। ये इंसान कितने भूल में है, दिल करता है सारी दुनिया को पकड़ पकड़ के बता दे कि ऐसे रब को भूलना कहाँ की अकलमंदी है, काश इंसानों को पता चल जाए अपने रब का तो कोई उससे दूर ना भागे, काश इंसानों को एहसास हो जाए उस रब का कि वो कितना मेहरबान है, वो रऊफ और रहीम है सब इंसानों पे, हमसे तो कोई अच्छी तरह बात ना करे ना तो उस हम कहते हैं एक दफा नहीं की ना मैं 10 दफा नहीं बात करूंगी, कोई मुड़ के हमारा शुक्रिया ना करे ना तो हम कहते हैं अगली दफा इसको दूंगी नहीं कोई तोहफा, शुक्रिया नहीं किया जी इन्होंने, कोई हमें अप्रिशिएट ना करे तो हमें बुरा लग जाता है, और अल्लाह ताला के आगे लोग ना सिर्फ ये कि उसकी नाफरमानी करते उसका इनकार ही किए जाते, कोई है ही नहीं, फिर भी वो नेमतों की बारिश करता जाता है करता जाता है। यकीन जाने ये 2 4 मिनट के लिए हमारी सांस अगर बंद हो जाए ना, हम तो ये सारी पढ़ाइयां छोड़, ये सारा सुनना छोड़, ये सब कुरान भी यही पढ़ा रह जाए, सब चीजें हम तो ये जमीन पे पढ़ के तड़प रहे हो, जैसे मछली पानी के बाहर आ जाए तो तड़पती है ना, ऐसे हमारी हालत हो जाए, इतनी सी मार है हम, इतनी सी चीज है हम। सब भूल जाएगा, हमारे पास टाइम नहीं, हम नहीं ऐसे कर सकते, नहीं ये क्या बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी तावीलें, बड़ी बड़ी आर्ग्यूमेंट्स, इधर से बात उधर की बात, ये कभी कोई चीज ले आते हैं कुरान के आगे, कभी कोई आर्ग्यूमेंट ले आते हैं, कभी कोई दलीलें देते हैं, जस्टिफिकेशंस देती देनी अपनी नाफरमानी की, सब भूल जाएगा, बस ये निकलेगा मुंह से, अल्लाह बस सांस दे दे, अल्लाह अल्लाह सांस दे दे, मैं मान गई, यही निकलेगा। अल्लाह अकबर, ये तो आयत ही ऐसी है कि इनके ऊपर तो पूरा लेक्चर भी कर लूँ ना तो फिर भी वक्त कम होता है। लिकुल्ली उम्मत इंजाल न मन सकन हम नासिकू, हर उम्मत के लिए हमने एक तरीका इबादत रखा है और वो इबादत करने वाले हैं उसकी, यानी मनसक कहते हैं, देखिए तरीका इबादत को भी कहते हैं। हमने पहले आयात के अंदर इसका तर्जुमा कुर्बानी किया था, इसलिए कि वहां पे जानवरों की कुर्बानी आई थी बात, तो वो भी एक रिचुअल है ना कुर्बानी भी, तो जो भी मरासे में इबादत है, जो भी रिलीजियस रिचुअल्स हैं उनको भी मनसक कहते हैं, इसीलिए कहते हैं हज के मनासिक, क्योंकि वो भी एक रिलीजियस रिचुअल है। तो हर एक के लिए अल्लाह ताला ने अलग अलग मनासिक रखे हैं और वो अपने रिचुअल्स पूरे कर रहे हैं। जैसे कुरान में है ना, वलिकुल्लिम विजहतुन हुवा मुवल्लीहा, हर एक के लिए एक डायरेक्शन है, वो उसको ही फॉलो कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि सबके ठीक हैं जी, सब अपने अपने करते रहे, वो सारे ही ठीक है, नहीं। इसलिए कि अल्लाह ताला ये फरमाते हैं इन दीन इंद अल्लाह इस्लाम, अल्लाह के नजदीक दीन सिर्फ इस्लाम ही है, और अल्लाह ताला ने ये फरमाया वो मैं अब तक गैर इस्लाम दीन फलाई युकबला मेनू, जो इस्लाम के अलावा कोई दीन लेकर आया उसे कबूल नहीं किया जाएगा। तो इससे पता चलता है कि ये नहीं है मतलब यहाँ पे कि हर एक का जी अपने अपने, हर एक अपना अपना करता रहे, इट्स ओके, जैसे हम सोच रहे थे इट्स ओके, उनके भी ठीक है हमारे भी ठीक है, नहीं। जब कहते हैं ना लकुम दीनुकुम वलिया दीन या लिए आमली वाला कुम आमल को, ये कहते हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि सारे ही दीन अल्लाह को पसंद है और सारे जिस चीज के ऊपर चलेंगे कोई बात नहीं है, और हम भी इसी तरह सोचेंगे हाँ जी ठीक है, आप भी ठीक है, हम भी ठीक है, हम भी सारे खुदा को ही मानते हैं ना, कोई मसला नहीं है, नहीं। इसमें तो डिसअप्रूवल है कि हर एक के अपने अपने हैं, वो उसके पीछे लगा हुआ है, उसी के करने लगा हुआ, फला युनज़िउन्नक फिल अम्र फला युनाज अन्ना का फिर अम, तुम ना झगड़, युनाज ये बाम फाला से जो, यानी जिसमें आपस में होता है आपस में वो, यानी आप झगड़े वो तुझसे ना झगड़े, अमर में शरीयत में इस मामले में इन मनासिक में, यानी वो ना झगड़े, अब वो तो नहीं पढ़ रहे हम पढ़ रहे हैं, तो क्या मतलब है कि हम उनको ऐसा चांस, आप ऐसा चांस ही उनको ना दो कि वो आपके साथ बहसे करें, झगड़े करें, उलझे इसमें, तनाजा खड़ा करें, ये उनको मौका ना दो आप, ठीक है, इस तक ना लेकर आओ। क्योंकि बाज लोग जो होते हैं उन्होंने सुनना नहीं होता, उन्होंने सिर्फ जिसको कहते हैं ट्रबल मेकर्स, उन्होंने सिर्फ शोशे छोड़ने होते हैं, सिर्फ उन्होंने बातें बनानी होती है, उनका मकसद दीन को समझ के इसकी तरफ आना नहीं होता, बल्कि उनका मकसद लड़ाइयां करना होता है, फितना फितने पैदा करना होता है। तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया आप इनके साथ झगड़े, इनको मौका नहीं दे कि वो आपसे झगड़े, वदउ इला रब्बिका, और आप दावत देते रहे अपने रब की तरफ, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलियों में जाते थे, फरमाते या अय्युहन्नास कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ए लोगो कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह तुम फला पा जाओगे, आप बुलाते रहे अल्लाह के रास्ते की तरफ, आप दावत देना ना छोड़े, मगर क्योंकि देखिए जब ये मना क्यों किया गया कि आप झगड़ों में ना पड़े, बहसों में तनाजा ना खड़े करने के उसके अंदर उनको मौका ना दें, क्यों? इसलिए कि जब इंसान ऐसे लोगों के साथ उलझने शुरू हो जाता है ना तो बाकी लोग निग्लेक्ट हो जाएंगे, हो सकता है कोई और आपकी दावत का इंतजार कर रहा हो, लेकिन आप इसी के साथ अगर खींचा तानी में लग गए बैक एंड फोर्थ में, अब आके कोई चीज जरूरत थी जो मैं इसको किस तरह जवाब दूं, फिर वो कुछ और कह देता है, फिर आप ढूंढने शुरू होते मैं इसको कैसे जवाब दूं, मैं अब ये लेकर आऊं, मैं इसको ऐसे कहूंगी, आप उसके ऊपर सोच रहे हैं, आपने तो सारी अपनी एनर्जी उसी के अंदर लगा दी ना, जबकि उसका मकसद तो हिदायत तो पाना है ही नहीं, ना वो इस तरफ आना चाहता है, उसका मकसद सिर्फ आपको उलझाना है, इन्हीं कामों में लगाए रखे। तो ऐसे लोगों को छोड़ देना चाहिए। लेकिन ना आज के दौर में भी अबू जहल है, अबू लहाब है, आज के दौर में भी ऐसे लोग हैं, इन्हें मानना तो है ही नहीं, फिरौनियत है उनके दिमागों में। लेकिन अब हम क्या उनके साथ ही उलझते रहे? उनको ये नहीं कि उनको पैगाम ही नहीं देना, पैगाम दे दे, लेकिन उनके साथ उलझे नहीं, और ना ही उनको ऐसा मौका दे इस एक्सटेंड तक ना लेकर जाएं कि वो भी आपके साथ बस झगड़ने बैठ जाएं, बस दावत दें और अपने रास्ते पे चले जाएं। उनकी अपनी शरीयत, आपकी अपनी शरीयत, बस आप ये बात का यकीन रखें कि इन्नकल आला हुदम मुस्तकीम, के आप सीधे रास्ते, आप हिदायत के रास्ते पर। हिदायत का रास्ता कौन सा? जो सीधा रास्ता है, जो सिराते मुस्तकीम है। तो अब आप देखें, अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को ये सर्टिफिकेट दे दिया जो हम मांगते हैं ना अल्लाह से, इहदिनस सिरात अल मुस्तकीम, हम ये मांगते हैं, अल्लाह ने अपने नबी को फरमा दिया आप हैं ही हुदम मुस्तकीम पे, हिदायत पे जो सीधी है, और उनको ये अल्लाह ताला ने बता दिया। यानी दाई को एक तो ये बात इससे पता चली, दाई को खुद ये यकीन होना चाहिए, आप तो ये यकीन कर लें कि आप सीधे रास्ते में, तो दाई को ये यकीन होना चाहिए कि मैं सीधे रास्ते पे हूं। अगर तो वो खुद ही डावाडोल है, वो खुद ही कन्विंस नहीं है उस मैसेज से जो वो आगे पहुंचाना जा रहा है, तो फिर वो कैसे पहुंचाएगा? मसलन आप खड़ी हुई है, कई लोगों को कुरान की दावत दे रही है, आपको खुद ही नहीं अगर इस बात पे दिल आपका ठुका हुआ कि कुरान ही है जो हमारी निजात है, कुरान ही है जो जिंदगियां बदलता है, कुरान ही है जो हमें रास्ता दिखाएगा जन्नत का, कुरान ही है जो हमें अल्लाह ताला से जोड़ता है, कुरान के बगैर कोई जिंदगी नहीं, इसको सीखे समझे बगैर जिहालत है, अंधापन है। अगर आप इन बातों से खुद ही कन्विंस नहीं है ना, और आपको खुद ही लगता है कि हाँ ठीक है पढ़ भी लें तो ठीक है, नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, इतना भी जरूरी नहीं है, अगर आप इस तरह यकीन करें, आपकी बात के अंदर कोई वजन नहीं होगा, आप दूसरे को कन्विंस कर ही नहीं सकेंगे। सबसे पहले आपको खुद कन्विंस होना चाहिए कि जो पैगाम आप दे रहे हैं उसके ऊपर आपका दिल खुद जमा हो, तब जाके आपकी बात में असर आएगा, तब जाके आप दूसरे को जब इस रास्ते की तरफ बुलाएंगे तो उसके दिल को बात लगेगी। इसीलिए जब कई स्पीकर्स बोलते हैं, जब इंसान को बड़ा शौक होता है वो उठ के बस बोलना मैं अभी दीन की तरफ बुलाता हूँ, लेकिन दिल से नहीं बोल रहे होते ना, जब उनका दिल खुद कन्विंस नहीं होता उसके ऊपर ना, तो फिर आप देखेंगे बातों में असर भी नहीं होगा। इसीलिए आपके खुद दिल, पहले दिल के अंदर यकीन हो, आपका ये ईमान हो, तब आप देखेगा आपकी बात का असर ही अलग होता है। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया आला ऊपर, जैसे आप किसी सवारी के ऊपर ऊपर सवार होते हैं, आला होते हैं ना अपॉन, आप उसके ऊपर हैं, किस पे? जो उदम मुस्तकीम है, जो हिदायत है सीधी, उसके ऊपर आप चल रहे हैं। जब ऊपर होते हैं आप किसी रास्ते के, तो फिर जाहिर है आप उसी रास्ते पे होंगे तो मंजिल पे पहुंच जाएंगे, ये सीधा रास्ता है, अगर उससे कहीं डिविएट हो गए तो फिर उतर गए उस रास्ते से तो रास्ता गुम कर देंगे। इसका मतलब है हुदम मुस्तकीम पे ही चलते ही रहना है अगर मंजिल पे पहुंचना, ये सिराते मुस्तकीम है। वह इन जदलू का, और अगर वो झगड़ा करें आपसे, अगर वो फिर भी लड़ते रहे आपसे, वो बहाने ढूंढने के हम किसी ना किसी तरह कोई शोशा निकालें, मैंने जैसे आपको कहा ना कि कुछ लोगों का बस काम ही यही होता है, उन वो, लेकिन वो ज्यादा लोग नहीं होते, वो 2-3% लोग होंगे, 2-4% होंगे बस, इससे ज्यादा नहीं होते, हर एक नहीं झगड़ने के लिए खड़ा हो जाता, ज्यादातर लोग माने या ना माने वो अलग बात है, लेकिन सुन लेते हैं, तो उनको नहीं इग्नोर करना हमने, इनके पीछे ये जो बहसें और झगड़े करने वाले लोग हैं, इनके पीछे हमने उन लोगों को पैगाम देना नहीं छोड़ देना। तो ये जो थोड़े माइनॉरिटी में लोग हैं ना, ये अगर आपसे झगड़ने के लिए खड़े भी हो जाएं और आपका पीछा ही ना छोड़े, फकुल्लाहु आलमु बिमा तअमलून, तो आप बस कह दें कि अल्लाह ताला ही जानता है जो तुम लोग करते हो, बस बात है तब। अब झगड़े करने की क्या जरूरत है, अल्लाह को तो पता है ना जो आप कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये मुनाजरे, ये झगड़े, ये बहसें, ये दीन के नाम पे, ये इससे कभी भी पैगाम सही से पहुंचता नहीं है। और झगड़े को लंबा करते जाना, बहसें करते जाना, आवाजें ऊंची हो रही हैं, फिर एक दूसरे के गिरेबान पकड़ लिए, फिर कुछ कर लिया, आस्तीनें चढ़ा ली, चलो काम ही खत्म हो गया, यहां तक नहीं पहुंचना। बस कह दे अल्लाह ताला जानता है जो तुम करते हो, और अल्लाह याकुम बैनकुम यौमल कियामती फीमा कुंतुम फीही तख्तलिफून। अल्लाह ताला है ना, वो एक दिन तो आना है कयामत का दिन, जिस दिन वो फैसला करेगा तुम्हारे दरमियान, इसमें जो तुम लोग इख्तलाफ करते हो, फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा कौन सीधे रास्ते पे था और कौन गलत। जब यहाँ पे समझना ही नहीं, कुछ लोगों ने समझना है ही नहीं है यहाँ पे, तो फिर उनका मामला अल्लाह के ऊपर छोड़ देना। अलम तआलम अन्नल्लाह यालमु मा फिस्समाई वल अर्द, क्या तुम जानते नहीं हो, तुमने जाना नहीं, तुम्हें ये बात समझ नहीं आती कि अल्लाह ताला तो वो जानता है जो कुछ आसमान में और जमीन। इनकी बहसें भी अल्लाह जानता है, इनके दिलों में क्या है वो भी अल्लाह जानता है, इन्होंने कितना मानना है और कितना नहीं मानना, और किस मकसद से बहसें करते हैं वो भी अल्लाह ताला जानता है। माजी हाल और मुस्तकबिल सब उसके लिए यकसा है, हर हरकत, हर अमल, हर आंख की जुम्बिश, हर दिल के ख्याल को वो जानने वाला है। बल्कि दिल का ख्याल तो बाद में आता है, उसको पहले ही पता है इस दिल में क्या ख्याल आना है। नदाले का फी किताब, ये ही नहीं कि वो जानता है, उसने एक किताब में भी लिख रखा है, और हदीस में आता है ना कि आसमान और जमीन की तखलीक से भी, इनको पैदा करने से भी 50,000 ईयर्स पहले, जबकि अल्लाह ताला का आर्श पानी पे मखलूक की तकदीर लिख दी गई। तकदीर क्या होती है, अल्लाह का इल्म जो उसने लौहे महफूज में लिख दिया। सुनन की हदीस में है ना कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने कलम को पैदा किया और उससे फरमाया लिख, उसने पूछा क्या लिखो, फरमाया जो कुछ होने वाला है कयामत तक उसको लिख दे, तो कलम ने वो सब लिख दिया। इब्ने अब्बास का कौल है कि 100 साल के रास्ते में अल्लाह ने लोहे महफूज को पैदा किया, और मखलूक की पैदाइश से पहले जबकि अल्लाह ताला अर्श पे था, कलम को लिखने का हुक्म दिया, उसने पूछा क्या लिखो, फरमाया मेरा इल्म जो मखलूक के बारे में कयामत तक का है वो सब लिख दे। ये कब हुआ था, कब हुआ था ये, आसमान और जमीन भी नहीं पैदा हुए थे, और कितना अरसा पहले उससे, 50,000 ईयर्स पहले। एक पता था कि एक बंदी आएगी जिसका ये नाम होगा, उसने इतनी सांसें लेनी है, उसने इतना खाना है, इतना पीना है, उसने ये अमल करने है, अल्लाह का इल्म है ना, उसने नेकियां इतनी करनी है, गुनाह इतने करने हैं, उसने तौबा इतनी दफा करनी है, नमाजें इतनी पढ़नी है, उसने इस जगह पे रहना है, इस जगह पे नौकरी करनी है, ये कमाना है, ये खाना है, उसकी मौत इस जगह पे लिखी हुई है, सब लिख दिया गया था। अल्लाह अकबर, मगर इसको कोई बहाना बना के ये ना कहे हमारा तो पहले ही लिख दिया, लिहाजा हम क्या करें, आपको क्या पता होगा क्या पहले लिख दिया गया। ये तो अल्लाह ताला का इल्म है, अल्लाह का इल्म आपको रोक नहीं रहा कुछ करने से, आप करें, नेकियां करें जितनी भी करनी है, ये इसको चीज को छोड़ दे। तकदीर में ना बहस नहीं करनी चाहिए, याद रखे, वरना इंसान गुमराह हो सकता है। बस ये याद रखे, ये तकदीर अल्लाह ताला का इल्म है, और हमारा इसके ऊपर ईमान है कि तकदीर बरहक है। ये ईमानियात में से ना, 6 ईमानियात में से छठा ईमान है तकदीर का। फिर लोग इसके ऊपर बहस करते हैं, आपको बताएं ईमान क्या रह जाएगा अगर आप इस पे बहस करेंगे, और इसके ऊपर से इस ईमानियात की इस शाख के ऊपर बहुत लोग गुमराह हुए और उनके फिरके बने, कदरिया वगैरह, ये इसी से तो बने थे। तो कुछ ने तो कह दिया कि हम तकदीर को मानते ही नहीं, तकदीर कोई चीज ही नहीं। कुछ ने कहा कि इंसान तो बिल्कुल मजबूर है, उस वो कुछ वो खुद नहीं कर सकता, बस अल्लाह की तकदीर ने उसको रोबोट की तरह चलाना है और बिठाना है और उठाना है, और वो उसके तो अपने बस में कोई अमल है ही नहीं। तो लिहाजा इसके ऊपर बहसें नहीं करनी, बस ये याद रखें अल्लाह का इल्म है जो उसने बहुत पहले आसमान और जमीन की पैदाइश से भी लिख रखा है, लोहे महफूज में उसके पास ये रिकॉर्ड मौजूद है। और ये अब देखिए इस वक्त दुनिया में 2 बिलियन अगर लोग हैं, तो इन 2 बिलियन लोगों की किताबें ही सोचे, इनका रिकॉर्ड ही लिखा जाना लगे तो कितना बड़ा इनका हो कि भाई ये क्या करना, उठना बैठना चलना फिरना, इनका जिंदगी मौत, इनके बच्चे कितने होने, कहाँ शादियां होनी, सब चीज अब सोचे कितना ज्यादा है। तो अब इंसान कहता है कि जो आदम अलैहिस्सलाम से क़यामत तक के सब चीज का इल्म, तो ये तो कितना ज्यादा हो जाएगा, फिर कैसे ही वो लिखा जाएगा इन्ना ज़ालिका लिल्लाही यसीर। बेशक ये अल्लाह पर बड़ा ही आसान है, अल्लाह तआला के लिए कोई मुश्किल बात ही नहीं, तुम्हारे सोचने के लिए मुश्किल। और देखिए इतने से इंसान ने ये देखे क्या चिप बना ली है कंप्यूटर के, उस चिप के अंदर कितनी ज्यादा डेटा स्टोर हो जाता है, कितना ज्यादा इंफॉर्मेशन उसके अंदर इतने से चिप के अंदर आ जाती है, तो ये तो इंसान ने बना लिया, अल्लाह ताला के लिए क्या मुश्किल है, अल्लाह के लिए बड़ा ही आसान है, इसको मुश्किल ना समझो। वयाबुदून मिन दुनिल्लाहि मा लम युनज्जिल बिही सुल्तान व मा लैसा लहुम बिही इल्म। मैंने आपको बताया ना ये सारे तौहीद के दलाइल है, वो अल्लाह की इबादत करते हैं, वो अल्लाह के सिवा औरों की इबादत करते हैं, मा लम युनज्जिल बिही सुल्तान, जिसकी कोई भी दलील नहीं। सुल्तान मैंने आपको क्या बताया, अथॉरिटी के लिए भी आता है इख्तियार, और प्रूफ के लिए भी, यानी कोई प्रूफ ही नहीं है, कोई इसकी कोई एविडेंस ला के दिखाई जाए, कोई बताया जाए, कोई दलील दी जाए, कोई बात को साबित किया जाए कि हाँ भाई कोई और भी है अल्लाह के सिवा, कोई भी नहीं, अल्लाह ने नाजिल ही नहीं कोई की कोई सुल्तान। मैंने आपको बताया ना सुल्तान कैसी बात होती है कि कंक्लूसिव बात, कि उसके बाद कोई बात करने की जरूरत ही ना रहे, बात ही जिसको कहते ना बात ही खत्म हुई जी। अब ये इतनी बड़ी दलील आ गई कि बात ही खत्म हो गई, इतनी बड़ी बात को सुल्तान कहते हैं। अब देखिए अल्लाह ताला फरमाता है कि उसने तो कोई सुल्तान नहीं नाजिल की, यानी कोई पैगंबरों के हाथों किसी पैगंबर ने आके ये बताया हो कि अल्लाह के साथ भी कोई शरीक है, किसी किताब में कोई वही आई हो अल्लाह की तरफ से जिसमें ये बात लिखी हुई हो कि कोई है जो अल्लाह के साथ किसी चीज में भी किसी किस्म की चीज में भी शरीक हो। वमा लैसा लहुम बिही इल्म, और ना इनको इसका कोई इल्म है, ना अकली दलील कोई है, अकल भी नहीं बताती अपना इल्म जो है ना, अकल से अकल भी कोई चीज की प्रूफ नहीं देती कि अल्लाह ताला के साथ कोई शरीक है। कि जहां पर अकल काम करती होती है ना वहां पे शिर्क तो आ ही नहीं सकता, ये तो जब अकल ही मारी जाए ना, इल्म ही ना हो, जिहालत होती है ना जहां, वहां पर शिर्क पनपता है। आप देख ले जिहालत है ये, चाहे कोई पीएचडी करे हुए बैठा हो, कितने ही बड़े साइंसदान हो, लेकिन उसको कुरान की जुबान में यही हम कहेंगे कि इसके पास कोई इल्म नहीं, जो शिर्क करता है, जहालत है, जहां जहां जहालत है वही शिर्क है, शिर्क होता ही वहां पे है जहां पे जहालत है, ये आप कह सकते हैं। कि इल्म तो कोई भी इल्म ये नहीं कहता कि हाँ खुदा के साथ कोई और माबूद है। इवन आप देखें ये साइंसी उलूम के अंदर लोग उससे ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि हाँ कोई खुदा है नहीं, और देखा नहीं जा सकता, हालांकि उनका खुद ही इल्म प्रूव करता है कई चीजें नहीं देखी जा सकती, कई चीजें नहीं सुनी जा सकती, लेकिन साइंस उसको मानती है। फिर आप जो सितारों सैयारों इनका इल्म रखते हैं, पता चलता है कि वहां एक कोई खुदा ही है जो सब कुछ चला रहा है। जब जिहालत होती है ना सही इल्म नहीं होता तो फिर देखिए शिर्क आता है। हमारे ज़ालिमीना मिन नसीर, और जालिमों के लिए कोई मददगार नहीं होता। जालिम कौन? जो जुल्म करता है। और सबसे बड़ा जुल्म क्या है? शिर्क। जो शिर्क करने वाले ने इनका कोई मददगार नहीं होना। जिनको ये पूज रहे हैं उन्होंने भी भाग जाना, उन्होंने भी इनकी मदद के लिए नहीं आना। बयिनातिन, और जब इन तुम पढ़ी जाती हैं अलैहिम उन पर आयातुना, हमारी आयात बय्यिनात, कौन सी आयात? रोशन है, बिल्कुल वाजे, कोई उसके अंदर कंफ्यूजन ही नहीं है। तारीफ़ फी वजूहिल लदीन कफरुल मुनकर, तो तुम देखोगे, तुम पहचान सकते हो, तुम मेरे सामने आ जाएगा कि उनके चेहरों पर, किन के, जिन्होंने कुफर किया, उनके चेहरों पे नागवारी आ जाती है। यानी जब तौहीद का दर्स दिया जाता है ना, तौहीद के बारे में बात बताई जाती है, जब ये अल्लाह की आयात सुनाई जाती है, तो काफरों को अच्छा नहीं लगता, वो इस चीज को नापसंद करते हैं, और इस कदर नापसंद करते हैं कि यकादूना यस्तूना बिल्लदीना यतलूना अलैहिम आयातिना, कि करीब है कि वो हमला कर दे उन लोगों पर जो इन आयात की, हमारी आयात की तिलावत करते, उनके ऊपर झपट पड़े, उनको मारे, क्योंकि उनको इतना बुरा लगता है अल्लाह की आयतें, उनसे बर्दाश्त नहीं होती, गुस्सा उनको इतना आता है। देखिए ये किन के बारे में बात हो रही है? जो काफिर है। लेकिन हमें भी थोड़ा सा अपना जायजा लेना चाहिए कि जब अल्लाह की आयात हमारे सामने पढ़ी जाती है तो हमारा क्या रिएक्शन होता है? क्या इन काफिरों जैसा होता है कि हमें अच्छा नहीं लगता, हम अनकंफर्टेबल होने शुरू हो जाते हैं, हम कहते हैं कब बंद करेंगे ये? अब कोई किसी, वैसे तो पढ़ना नहीं खुद कुरान, किसी फंक्शन पे, किसी जगह कोई सेरेमनी हो रही है उसमें कुरान की तिलावत से अगर सेरेमनी शुरू हो रही है तो कई लोग अपने फोन देखना शुरू कर देते हैं, कई इधर उधर होने शुरू जाते हैं, कई उधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, कब खत्म होगा, जैसे मुसीबत पड़ गई इनको, मसला हो गया। अल्लाह की आयात पढ़ी जाती हैं, उनका दर्स होता है, वो बातें समझाई जाती हैं, तो उनके लिए एक बैठना मुश्किल हो जाता है कि इस मजलिस में हम कैसे बैठे, इतनी लेट जाओ कि सब खत्म हो जाए, ताकि बस खाना पीना करके और हल्ला गुल्ला करके और बातें करके आ जाए, हम हमसे नहीं बैठा जाता, हमसे नहीं ये सुना जाता। हम अपना, ये नहीं है कि इससे कोई काफिर हो जाता है, लेकिन काफरों वाले सिम्टम्स उसमें जरूर है, अगर किसी के साथ ऐसा होता है, ये भी सिम्टम्स है ना, बीमारी है, तो उनकी वाली बीमारी इस बंदे में भी आ गई जिसको नागवार गुजरती है अल्लाह की आयात। अल्लाह की आयात पढ़ने से ईमान वालों का क्या होता है? ज़ादत हूँ मैं ईमान, उनका ईमान बढ़ जाता है, बाज़ की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। और काफरों का क्या होता है? उन वो मतलब अनकंफर्टेबल होने लगते हैं, उनकी तबीयत पे बोझल होती है। तो अब आप देख लें फिर, किसको कुरान बुरा लगेगा, किसको कुरान पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा और उसका दिल नहीं लगेगा। लेकिन याद रखें, जिसके अंदर अल्लाह की कदर होगी ना, उसको अल्लाह की आयात भी पसंद आएंगी। जब अल्लाह ताला की कदर ही दिल में ना हो तो उसकी आयात के ऊपर भी फिर दिल ही नहीं लगता। हमें जो हमें पसंद होते हैं, कोई वो चाहे प्लेयर हो, चाहे फिल्म एक्टर हो, चाहे एक्ट्रेस हो, टीवी पे कहीं देख लें या कहीं पे देख लें, कोई बात कर रहे हैं, फौरन हम कहते हैं देखो आवाज तेज करो क्या कह रहा है, हम सुनना चाहते हैं ना भाई, इनका क्या फरमान है, माशाल्लाह, उनकी कोई बात ना मिस हो जाए, ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं आज उसने क्या कहा, ट्विटर पे उसका क्या पैगाम आया। तो हमें वो पसंद है ना, और कायनात का मालिक बात कर रहा है, ये कुरान उसकी बात है, वो हमसे बातें कर रहा है, हमें नागवार गुजरे तो फिर सोच लें कि हमारे दिल में उसके लिए कितनी मोहब्बत है, ईमान का लेवल क्या है और उसकी कितनी पहचान है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कुल, कह दीजिए आप इनसे, अफ़ाउ नबी को बिशारे में जारे को, क्या मैं ना तुम्हें बताऊं इससे भी ज्यादा बुरा, तुम्हें ये बुरा लगता है ना, मैं इससे भी ज्यादा बुरी चीज ना तुम्हारे लिए बताऊं, अन्नार, आग, वादा अल्लाहुल्लदीन कफरू, अल्लाह ने वादा किया इसका काफरों के साथ, और बेसल मसीर, ये वर्स्ट प्लेस होगी जहां पे वो रहे, तुम्हें ये बुरा लगता है, इससे भी बुरी चीज है तुम्हारे लिए तो आग है, और वो आग है, और वादा है इसका, अल्लाह ताला को तो वादा करने की जरूरत ही नहीं, हो तो वैसे ही सच होगा सच है, लेकिन इनको यकीन दिलाने के लिए कि फिर ये अल्लाह का भी वादा है कि ऐसे काफिर उनका अंजाम आग ही है। आप सोचें ये कोई छोटी बात नहीं है, ये उनके लिए फैसला दिया जा चुका। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला महफूज रखे आग के अजाब से। और अब एक मिसाल से समझाया गया कि शिर्क क्या चीज होती है, कितना कितनी कमजोर, कितनी भूती चीज है। या अय्युहन्नास, ए लोगो, ए इंसानियत, सारी इंसानियत को खिताब है, दूरी ब मसलुन, एक मिसाल बयान की जाती है तुम्हारे लिए, एक मिसाल दी जाती है तुम्हारे लिए, फस्तमीउ लहू, तो गौर से सुनो इसको, तो आप सुन ले, सब लोग गौर से सुने इस मिसाल को, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया इसको गौर से सुनो, ऐसे सारे कुरान को ही गौर से सुनना चाहिए, लेकिन खास तौर पे इस मिसाल के अंदर ना बहुत बात समझ आ जाती है हमें कि शिर्क की हकीकत क्या है, शिर्क क्या चीज होता है। अब बिल्कुल इसके ऊपर शिर्क को रख लेना आप, ठीक है, ये अल्लाह ताला बता रहा है हमें, इन्नल्लदीन तदाउन मिन दूनिल्लाह, बेशक वो लोग, वो हस्तियां या वो लोग, तदाउन तुम पुकारते हो जिनको, मिन दूनिल्लाह अल्लाह को छोड़ के, अल्लाह के सिवा जिनको छोड़, जिनको तुम पुकारते हो। अब बाज जगह पे लिखा हुआ है ये बुतों की बात हो रही है, यहाँ पे तो बुत तो नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे तो लिखा हुआ मिन दूनिल्लाह अल्लाह के सिवा, अल्लाह के सिवा में क्या चीज आ जाती है, वरना बुत भी कहा जा सकता है, लर्जीना तो तरुण असनामन, असनाम को जो पूजते हैं, तो यहाँ पे तो मिन दूनिल्लाह कहा गया, ताकि रहती दुनिया तक जो जिस जिसको भी पूजता रहे, चाहे वो कोई पैगंबर हो, चाहे कोई फरिश्ता हो, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे कोई पत्थर हो, चाहे कोई वो दरख्त हो, चाहे कोई सांप हो, चाहे कोई चूहा हो, चाहे कोई भी चीज हो, जिसको भी लोग पूज रहे हैं, दूनिल्लाह में सबब है। अब कैसे इसको प्रूव करेंगे कि सबब है, इसलिए अल्लाह ताला ने सूरह मायदा में जब ईसा अलैहि सलाम से बात की है ना, तो अल्लाह ताला ने ईसा अलैहि सलाम से फरमाया कि क्या ए ईसा, क्या तुमने कहा था कि मुझे और मेरी माँ को पुकारो मिन दूनिल्लाह अल्लाह के सिवा, अल्लाह के सिवा यानी अपने आप को और अपनी माँ को रख दिया था, तो वो तो बुत नहीं है ना, लेकिन पैगंबर को पूजना भी मिन दूनिल्लाह में कहा गया, तो इसका मतलब है मिन दूनिल्लाह में कोई भी आ जाता है, चाहे वो जिंदा है, चाहे वो मुर्दा है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो जिन है, चाहे वो कोई भी है, जिसको भी कोई पुकारे अल्लाह के सिवा, लन यखलुकू दुबाबन, वो पैदा नहीं कर सकते एक मक्खी, मक्खी की क्यों मिसाल दी गई, इसलिए कि मक्खी एक बहुत छोटी सी चीज है, बिल्कुल यानी जिसकी कोई वैल्यू भी नहीं है, इतनी इंसानों की जिंदगी के अंदर देखें क्या मक्खी हैसियत रखती है, बिल्कुल एक बेवकत सी चीज, छोटी सी चीज, इसको भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते, वाला विजतमाउ लहू, और अगरचे वो जमा हो जाए उसके लिए, चाहे सारे के सारे जमा हो जाए, जितनों को भी पुकारते हैं वो सारे जमा हो जाए, तब भी वो एक मक्खी को पैदा नहीं कर सकते, हालांकि मक्खी एक हकीर चीज है, हकीर चीज को पैदा नहीं कर सकते तो किसी और को क्या पैदा करेंगे, किसी और का काम क्या करेंगे। मुसनद अहमद की हदीस कुदसी में है कि अल्लाह ताला का फरमान है उससे ज्यादा जालिम कौन है जो मेरी तरह किसी को बनाना चाहता है, अगर वो वाकई ये कुदरत हासिल रखता है तो एक जर्रा बना दे या एक मक्खी बना दे एक दाना अनाज का ही खुद बना के दिखा दे, यानी वो एक जर्रा भी नहीं बना सकता। दूसरी हदीस में, चाहे एक जौ का दाना बना दे, छोटा सा होता है जौ का दाना, मक्की से भी छोटी चीज ही बना दे। तो अब आप देख ले कि इंसान कितनी बेताकत और कितना वो वीक है, वो कोई भी किसी किस्म की तखलीक नहीं कर सकता, तो फिर उसके हाथ में क्या है। वही यसलुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैअन, और अगर जुबाब उनसे कोई चीज छीन ले, ला यस्तन्क़िज़ुहु मिन, तो नहीं वो छुड़ा सकते उसको उससे। इतने कमजोर हैं, मक्खी पैदा करना तो खैर दूर की बात है, मक्खी जैसी हकीर और कमजोर मखलूक, इनसे कोई कोई चीज छीन के ले जाए, छीन के मतलब जैसे कि हलवे वलवे रखे होते थे उनके सामने, बुतों के सामने, या कोई और खाने की चीज है उसमें से मक्खी, जरा वहां पे मंदिरों और इनके अंदर मक्खियां तो काफी होती थी, और खाने पीने काफी होते, मिठाइयां रखी होती हैं, तो उसमें से कितना बिट ले जाएगी मक्खी। शही अन, कुछ भी चीज, कितना उसका मुंह है, छोटी सी चीज लेकर जाएगी ना वो, इतनी छोटी सी चीज भी अगर लेकर चली जाए, तो ये उस नातवां बेबस कमजोर सी छोटी सी चीज से भी वो छुड़ा के नहीं ला सकते उस जर्रे को, निकाल के नहीं ला सकते। दाफत तौलिबु वत मतलूब, कितना कमजोर है मांगने वाला और जिससे मांगा जा रहा है, जो तलब करने वाला और जिससे तलब किया जा रहा है। इससे अल्लाह ताला ने शिर्क की हकीकत को सामने रखा है कि इस कायनात के अंदर खालिक बस एक ही है, मखलूक बाकी सारी मखलूक है, और मखलूक का काम क्या है कि वो खालिक के आगे झुक जाए, अबदियत, और खालिक का हक है कि उसी को पूजा जाए। मखलूक तो इस कदर ज्यादा इतनी कमजोर है कि उनके सामने उनकी जैसी एक छोटी सी मखलूक भी कुछ लेकर चली जाए तो वो वापस नहीं ला सकते। तो मखलूक कहाँ और खालिक कहाँ, तालिब कौन है, तालिब से मतलब ये बुत और या जो भी माबूद है, और मतलूब से मतलब मक्खी भी है, और ये भी मतलब है कि तालिब वो जो उनके पुजारी हैं, और मतलूब जिसको भी पूजा जा रहा है, पूजने वाला भी कमजोर, जिसको पूजा जा रहा है वो भी कमजोर। कभी कभी देखते हैं इंसानों को पूज रहे हैं, अल्लाह माफी दे, वो इंसान कुछ सोचना तो चाहिए ना, मुझे समझ नहीं आती कि अकल मत बिल्कुल ही मारी गई। वो इंसान भी बाथरूम जाता है सोचे, उसको हाजत है, कभी उसको भूख लगेगी, कभी वो प्यास उसको लगती है, कपड़ों की हाजत उसको है, कभी वो बीमार हो जाता है। इनकी मतें मारी जाती हैं, इनकी अकलों को क्या हो जाता है, वो कैसे खुदा हो सकता है जिसको ये हाजतें लगी हुई, और वो क्या पैदा कर सकता है, और वो खुद कितना बेबस है, उसको तो अपने जिस्म पे कंट्रोल नहीं है अपने खुद, और फिर वो मर भी जाता है, उसका दिल धड़कना बंद हो जाता है, सांस बंद हो जाती है, उससे जाके क्या मांग रहे हो। अल्लाहू अकबर, और इतनी बड़ी बड़ी उनकी तस्वीरें लगाई हुई हैं कंप्यूटर पे, उसके वो सामने जो स्क्रीन सेवर है उसके अंदर उनकी तस्वीरें, हर जगह उनकी तस्वीर लगाई हुई है, कहीं हाथी की लगाई हुई है, कहीं किसी बंदरनुमा बुत की लगाई हुई है, किस कहीं कुछ करा हुआ है, मुझे समझ नहीं आती भी क्या है कि दाव फतौलिबु वल मतलूब, दोनों ही की कमजोरी की इंतहा नहीं है। जो आया उसके पास वो तो उसकी तो मोहताजी है ही, वो तो दूसरा जिसे मांग रहा है वो भी तो कितना मोहताज है। अच्छा पत्थर है तो वो तो बिल्कुल ही गया गुजरा, वो तो वैसे ही बिल्कुल बेचारा पत्थर ही है। वो बात आती है ना कि वो एक आदमी था, उसने जहाल इस्लाम आ गया था, लेकिन वो इस्लाम से अभी उसको नहीं पता था, वो आदमी किसी बुत कद में जाके, किसी मंदिर में जाके सो गया, कहीं उसको नहीं जगह मिली, तो रात को उसकी आंख खुलती, देखता है कुत्ता आया है, और हमारा कुत्ता कहीं से घूमता फिरता आ गया, वो बुद्ध के सामने दूध पड़ा हुआ, तो कुत्ते को भूख लगी हुई थी, उसने सारा दूध चट कर ली। अब वो दूध से ना नहलाते भी थे अपने बुतों को, तो अब जब वो उसका पेट फिर भी नहीं भरा तो उसने बुत को सूंघा, वो भी बड़ा मजेदार लग रहा था, तो उसने बुत को चाटना शुरू कर दिया, उसको चाटता गया। फिर उसके बाद अब जाहिर है दूध तो पी लिया था तो पेशाब भी आ गया, तो उसने एक टांग उठाई और बुत के ऊपर ही पेशाब कर दिया। वो आदमी जो वहां सोया हुआ था ये सारा कुछ देख रहा था, वो देख के उसने सोचा ये कैसा है खुदा, ये क्या खुदा है कि एक जानवर आके इसके ऊपर पेशाब कर रहा है और ये कुछ ताकत नहीं रखता। तो वो हक की तलाश में निकला और आपसे शर्म को पाके ईमान ले आया। तो देखे ना ये इसकी वीकनेस का आप अंदाजा कीजिए, दोनों की वीकनेस का। और अगर कोई इंसान को पूछता तो वो भी वीक है, किसी को भी मखलूक को पूछता सारी वीक है, किसी के हाथ में नहीं है कि कुछ पैदा कर ले। आज तक इंसानों ने इतनी तरक्कियां कर ली हैं लेकिन देखिए सोच लें कि इतनी सी चीज पैदा नहीं कर सके, कुछ पैदा नहीं कर सके। रोबोट बना के समझते हमने बड़ी तरक्कियां कर ली, तो एक मक्खी तक नहीं बना सकते, इतनी टेक्नोलॉजी लगा ले अपनी। फिर इसी तरह जो साइंस को पूछते हैं वो भी देख ले, साइंस भी कितनी कमजोर है, जिसकी हर दिन आए दिन ही जो है ना उसको चैलेंज कर देते, ये कहते नहीं जी ये जी इसका गलत है, अब इसकी नई थ्योरी आ गई, अब वो गलत है फिर नई थ्योरी। ये साइंस को पूछने वाले भी देख ले, जिनकी साइंस को यही नहीं पता, आए दिन ही नई नई चीजें इंसानों की मत मारी जाती है जब वो इन चीजों को पूछते हैं और अपने आप को गिरा देते हैं। अल्लाह ताला ने इसका जवाब ये दिया है, मा कदरुल्लाह हक कदरी। असल बात ये है इन्होंने अल्लाह की कदर ही नहीं पहचानी, इनको पता ही नहीं है अल्लाह ताला कौन है, इन्होंने बड़ा अंडर एस्टिमेट किया, कहाँ ये मखलूक और कहाँ वो खालिक, इनको वैल्यू ही नहीं पता, अप्रिशिएट ही नहीं किया इन्होंने कि अल्लाह ताला कौन है। ये कुरान में दूसरी जगहों पे भी यही बात आ रही है, सूरह जुमर में भी आई, सूरह नाम में भी आई कि मा कदरुल्लाह हक कदरी, इन्होंने अल्लाह की कदर ही नहीं पहचानी। देखिए ना कदर उसको पता होगी नहीं जिसको पहचान तो हो कि कौन है। देखिए हीरे की कदर कौन जानता है, कहते ना हीरे की कदर जौहरी जानता है, उसको पता है ना ये हीरा, बाकी वो पता ही नहीं उन्होंने। इसी तरह अल्लाह ताला की कदर वो ही पहचानेगा जो जानता हो उस रब को कि वो कौन है। आप सिर्फ उसकी कायनात के ऊपर, उसकी मखलूक पे ही अगर आप गौर कर लेना आपकी अक्ल जो है दंग रह जाएगी। आप देखें इस कायनात को, वो कहते हैं कि भाई इतनी कायनातें इतनी गैलेक्सीज हैं, इतनी सारी हैं कहकशाएं, लाखों कहकशाएं हैं और खरबों अरबों खरबों खरबों सितारे हैं, और कहाँ तक इंसान आज तक उसका इल्म गया है, कहता है इंसान ना बेबस हो गया, कहता है हमें समझ ही नहीं आती इसकी इंतहा कहाँ है, कहाँ ये खत्म होती है, और अल्लाह ताला कहता है हम फैलाते जा रहे हैं इसको। अब सोचें ये पूरी कायनात, हदीस में आता है उस वक्त शायद इतना भी नहीं लोगों को इल्म होता होगा जितना आज पता चल गया कि कहकशाएं हैं, कितने लाइट ईयर्स दूर हैं, कहाँ तक सितारे सैयारे कितनी, ये तो हमारी तो जो हमारा निजामे शमसी है ये तो कुछ भी चीज नहीं है, इसको सूरज को देख के ही बड़े आप इंप्रेस होते रहते हैं कि सूरज बहुत बड़ी चीज है, सूरज जैसी बड़ी चीज, सूरज की मिसाल देते हैं, तो सूरज तो कुछ भी नहीं इस कायनात में, इससे कई गुना बड़े सितारे हैं, वो तो सूरज को ऐसे कई सूरज उनके अंदर समा जाए, इतने बड़े बड़े सितारे हैं। तो उसकी कायनात की वुसत का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और आपसे सलम ने क्या फरमाया कि ये पूरी कायनात जमीनों आसमान, ये पूरी कायनात आसमान में सारी कायनात आ गई ना, पूरी कायनात अल्लाह ताला के अर्श के सामने ऐसे है जैसे एक सहरा में छल्ला पड़ा हो, तो आप क्या बात करते हैं? और अर्श कुर्सी के मुकाबले में ऐसी है, और कुर्सी अर्श के मुकाबले में ऐसे है जैसे कि एक सहरा में एक छल्ला पड़ा हो, तो कायनात कुर्सी के मुकाबले में एक छल्ला है छोटा सा, कुर्सी इतनी बड़ी है और कुर्सी इतना छोटा सा छल्ला है अर्श के मुकाबले जैसे एक सहरा में पड़ा, और फिर वो जो अर्श का मालिक है वो कितना अजीम होगा। तो इस बात तुमको समझ क्यों नहीं आती? तो इन्होंने को कदर ही नहीं आई, कहां इतनी हकीर छोटी सी मखलूक, कहीं कोई बुद्ध को, पत्थर के बुद्ध को पूज रहा है, कहीं कोई दरख्त को पूजने शुरू हो गया, कहीं कोई किसी इंसान को सामने बिठा के उसके आगे सजदे करना शुरू हो गया, कहीं कोई कब्रों के ऊपर जाके सजदे कर रहा है। कोई क्या हो गया इनको? ऐसे लगता है जब भी मैं ऐसी चीज देखती हूँ, मुझे लगता है इंसान अपनी तहकीर कर रहा है, अपने आप को हकीर कर रहा है। उसकी अजमत, इंसान की ना अजमत इसी में है कि वो रब्बे कायनात के आके सजदा करे। वो किसी शायर ने कहा ना कि मैं तो कोई चीज नहीं हूं, मैं तो कोई चीज नहीं हूं, लेकिन उसको देखो जिसका मैं गुलाम हूं। मैं खुद नहीं कोई चीज हूं, लेकिन उसको, उसकी तरफ देखो जिसका मैं गुलाम हूं। तो जब गुलामी किसी औरों के करना शुरू कर देता है ना इंसान, किसी औरों के, तो वो अपने आप को गिरा देता है। उसकी ये हैसियत नहीं कि इन चीजों के आगे सजदे करें। उसको तो अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया, सारी मखलूकात से ऊपर किया, वो नीचे गिर गया। वो जाके कभी साथियों के आगे झुक रहा है, कभी बंदरों के आगे झुक रहा है, कोई क्या है, कभी सांपों को सजदे करने लगा। इनको पता ही नहीं अल्लाह कौन है। इन्नल्लाह कवीयुन अजीज, वो अल्लाह तो कवी है, कवी ताकतवर, और ताकतवर ही नहीं अजीज भी है। अजीज जिसकी अथॉरिटी हो, जिसका गलबा हो, जरूरी नहीं हर एक जो ताकतवर हो उसका गलबा भी हो जाए। बहुत सारे लोग ताकतवर होते हैं लेकिन वो गलबा नहीं पा सकते। अल्लाह ताला वो कवी है जो अजीज भी है, गलबे वाला है, अथॉरिटी वाला है।